राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आधे जय राधा माधव कुंज बिहारी।
सभी लोग प्रेम से गाइए,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, हा यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव राधा माधव। माधव राधे जय। जय राधा गिरिधर राधा गिरिधर राधे। जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जय हाँ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ततो जय मुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद चार अध्याय आठ श्लोक क्रमांक 47। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषं वनमालिनं शंखचक्रगदापद्मे अभिव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुंडलीनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चननूपुरम् दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् पद्भयां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समचताम् हृत्पद्मकर्णिकादेष्ण्यं क्रम्यात्मन्यवस्थितं स्मयमानं विद्याये अत्सानुरागावलोकनम् नियतेनेकभूतेन मनसावरदर्शवम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते जपश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सक्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी मामी हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरात अरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने किरात हूणा रपुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाख सादय येन्ये च पापा यद पाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मे प्रभवैष्णवे नमः प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च ससतिं स्मृतिं मृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदता भुर्तेर्महतभी यैमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमोष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो दशषोडशात्मक सुलङ्क श्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति रविवार इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, सभी वेद और शास्त्रों का पका हुआ फल है। यह भागवत शास्त्र सर्वप्रथम परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा इस भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को दिया जा रहा था। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना रहे थे, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभ ग्रहित्वा एव देवा तत्र समागत। जब श्रीमद् भागवतम की कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तब स्वर्ग में रहने वाले समस्त देवी देवता गण सुधा कुंभ ग्रहित्वा अमृत का कुंभ लेकर सुखदेव गोस्वामी के पास आए। स्वर्ग में देवता लोग अमृत का पान करते हैं और यह अमृत का पान करके वे अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, निरोग हो सकते हैं। तो सभी देवतागण अमृत का घड़ा लेकर सुखदेव गोस्वामी के पास आए। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुदाम प्रपच्छ स्वगृहीत्वा एवा सुदाम इमाम। सभी देवतागण हाथ में अमृत का घड़ा लेकर सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करने लगे कि हे सुखदेव गोस्वामी, हम सब यहां पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं और हम सब देवताओं की इच्छा है कि यह स्वर्ग का अमृत आप रखिए और इस स्वर्ग के अमृत के बदले में आप हमें कथा अमृत का पान करवाइए। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुना देवताओं के मुख से कि यह स्वर्ग के अमृत की तुलना कथा अमृत के साथ कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बहुत क्रोधित हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काय क्व मणिर महान। संसार में शीशे के पत्थर की तुलना तुम हीरे के साथ करने जा रहे हो, कहां तुम्हारा यह तुच्छ स्वर का अमृत और कहां यह कथा अमृत। स्वर्ग का अमृत पान करने से व्यक्ति केवल निरोग हो सकता है, परंतु यदि कोई श्रीमद भागवत रूपी कथा का पान कर ले तो वह जन्म जन्मांतर से मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। तो महाराज परीक्षित को सुनाने कथा सुनाने वाले सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तुम तुरंत यहां से भागो, यदि तुम यह अमृत लेकर नहीं आए होते तो मैं तुम्हें इस कथा सुनने के लिए बिठाता, परंतु स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत अमृत के साथ कर रहे हैं, तुरंत वहां से भगा दिया। तो यह भागवत कथा अमृत स्वर्ग के अमृत से भी बहुत बहुत मूल्यवान है और यह भागवत अमृत ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको यहां प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद जी की हम सब पर बहुत असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है, जिससे प्रति रविवार को हम यहां पर भागवत कथा श्रवण कर सकते हैं। इस भागवत कथा के दौरान श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के अष्टम अध्याय में ध्रुव महाराज की कथा सुन रहे हैं। ध्रुव महाराज भगवान की प्राप्ति करने के लिए वन में निकल पड़े हैं, नारद मुनि का मिलाप हुआ। नारद मुनि ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि तुम मधुवन में जाकर वृंदावन में जाकर भगवान के किस रूप का ध्यान करना, क्योंकि जब तक ध्यान करने का विषय न हो तब तक व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है। तो ध्रुव महाराज ने पूछा, बताइए नारद मुनि किस रूप का ध्यान करना है। तो नारद मुनि भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। पिछले रविवार को हमने भगवान के रूप का वर्णन सुना, भगवान के रूप और गुण का वर्णन कर रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं, तरुणम रमणीयांगम अरुण ओष्ठे क्षणाधरम प्रणता शयनम निर्मणम शरण्यम करुणार्णवम। तुम जिस भगवान का ध्यान करने जा रहे हो वह भगवान तरुणम, वे बहुत तरुण हैं, वे बूढ़े नहीं हैं और वे कभी बूढ़े होते भी नहीं हैं। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का यह गुण है, वे नित्य नव यौवन रहते हैं, नव यौवनम च। और रमणीय अंगम, भगवान के सभी अंग मन को रमा देने वाले हैं, मन उसमें रम जाता है। अरुण ओष्ठ इक्षण अधरम, भगवान के ओष्ठ और अधर और इक्षण ये तीनों लाल है। ओष्ठ का अर्थ होता है ये ऊपर का भाग, अधर का अर्थ होता है नीचे का भाग। अधर ओष्ठ और आंखें भगवान की आंखें अरुण बिंब फल के समान लाल है, इसलिए मधुसूदन सरस्वती भगवान के रूप का वर्णन करते हुए हरे कृष्णा 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 तो भगवान की आंखें, भगवान के होठ बिल्कुल बिंब फल, शायद आपने देखे होंगे, बिंब फल के समान लाल है। इस संसार में स्त्रियों को अपने होठों को लाल करने के लिए लिपस्टिक लगानी पड़ती है। भगवान के अधर ओष्ठ और आंखें बिंब फल के समान लाल है। यहाँ पर होठ लाल करने के लिए लिपस्टिक लगाने की जरूरत पड़ती है। स्त्रियाँ अक्सर घिसती रहती हैं लिपस्टिक, परंतु भगवान को आज तक लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के होठ बहुत लाल है और भगवान की आंखें भी लाल रहती है। देखिए आप श्याम सुंदर को, आंख का जो अंदर का भाग है हमारा सफेद होता है, परंतु भगवान का लाल है। इसलिए मधुसूदन सरस्वती भगवान के अंग की उपमा जब बता रहे हैं, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीताम्बर दरुण बिंब फल धरोष्टात, भगवान के अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल है। और भगवान के गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान प्रणत आश्रयणम, भगवान अपने भक्त जनों को आश्रय देने वाले हैं। हे ध्रुव, तुम उस भगवान का ध्यान करना जो अपने भक्त को आश्रय देते हैं। भगवान भगवत गीता में प्राय कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब लोग सब कुछ छोड़कर आ जाओ, आश्रय देने वाला मैं हूं, मेरी आश्रय में आ जाओ। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, इस दुनिया के सारे लोग एक साथ भगवान के पास चले गए तो क्या भगवान के पास जगह कम नहीं पड़ेगी? भगवान इतने लोगों को कैसे आश्रय देंगे? 25-50 लोग हमारे घर पर आ जाते हैं फिर भी आश्रय नहीं दे सकते। परंतु भगवान प्रणत आश्रयणम, भगवान एक साथ सबको आश्रय देते हैं और गीता में ऐलान करते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ छोड़ कर आ जाओ। ऐसी बात नहीं है कि भगवान को हमारी बहुत जरूरत है या भगवान के वहां फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है इसलिए कुछ वर्करों को बुला रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। भगवान चाहते हैं कि इस संसार के लोग प्रसन्न हो, सुखी हो, तो भगवान प्रणत आश्रयणम और निर्मणम, भगवान सुख देने वाले हैं। यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, तो भगवान निश्चित रूप से उसे सुखी करते हैं। क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के पास जाते हो उस व्यक्ति से ऐसी चीज आपको मिलती है। यदि कोई बिजनेसमैन के पास जाएंगे तो बिजनेस की कुछ बातें मिलेंगी, यदि कोई कामी व्यक्ति का संग करते हो तो काम की बात मिलेगी, यदि आप भगवान के पास जाते हो तो आपको सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान के पास सुख के अलावा कुछ नहीं है। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ ही होता है कृषि भूवाचक, कृषि क्री, कृष्ण में जो क्री लगा हुआ है, क्री का अर्थ है कृषि, कृषि उद्योग जैसे हम बोलते हैं, कृषि का अर्थ है उत्पन्न करना, उत्पन्न होता रहा है, और अण का अर्थ होता है आनंद, जिससे सुख, जिससे आनंद उत्पन्न होता रहे निरंतर निर्वधि गति से, उसे कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति है जिससे निरंतर अजस अविरत आनंद निकलते रहता है, और ऐसे आनंद निकलने वाले के शरण में यदि हम चले जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी शरण ग्रहण करने वाला आनंदित हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो सुख प्राप्त करना है, प्राय इस संसार में सब लोग दुखी हैं, और वास्तविक सुख चाहिए तो कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। परंतु संसार के लोग कृष्ण की शरण में नहीं जाते हुए इस संसार के साधारण लोगों की शरण में जाते हैं। इस संसार के साधारण व्यक्ति क्या कर सकता है? वे स्वयं अपने आप में दुखी हैं। एक दुखी व्यक्ति दूसरे को कैसे सुखी कर सकता है? तो वास्तव में कृष्ण सुखी हैं, और जैसे सूर्य से निरंतर तेज प्रकाश निकलते रहता है, वैसे कृष्ण से निरंतर आनंद निकलते रहता है। कृष्ण चाहे भी मैं दुखी हो जाऊं, वो नहीं हो सकते हैं। जैसे सूर्य चाहे कि मैं अंधकार में आ जाऊं, तो कभी हो सकता है? जहां सूर्य तहां नहीं, जहां सूर्य होता है वहां अंधकार नहीं होता है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो इस प्रकार जो कृष्ण की शरण में जाते हैं वे निर्मणम, वे सुखी हो जाते हैं। और निर्मणम का दूसरा अर्थ होता है धनी। कृष्ण परम धनी है तो निश्चित है, सब लोग जानते हैं। यह मत समझिए कृष्ण केवल धोती पहनते हैं और ऊपर केवल खेस रखते हैं तो वे बहुत गरीब हैं। ये बहुत धनी है। इनके बारे में सुनिए, ये द्वारका में जहां पर रहते थे, वे द्वारका नगरी, पूरी नगरी ही सोने से बनी हुई थी। और एक दो पत्नी नहीं रखते थे, 16,108 पत्नी रखते थे। और सभी पत्नियों के लिए अलग अलग मकान, अलग अलग बंगले थे। और ये सभी मकान जो थे ये सीमेंट और कंक्रीट और ईंट से नहीं बने थे, चिंतामणि और पारस मणि से बने हुए थे। इसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए। चिंतामणि का अर्थ होता है चिंतन करने मात्र से सामने प्रकट हो जाए। कृष्ण की 16,108 जो पत्नियां थी, उनको कभी भी अपने घर पर रोटी बनाने के लिए स्टोव या गैस शुरू करने की आवश्यकता नहीं थी। चिंतामणि वे जिस कमरे में, जिस महल में रहती थी, वहां उस महल के बीच में रहकर चिंतन कर दे कि आज पाव भाजी चाहिए, तो सामने पाव भाजी प्रकट हो जाती थी। आज ये रोटी चाहिए या ये चाहिए या साड़ी चाहिए, जो भी चाहिए, चिंतन करने मात्र से प्रकट। ऐसे पति की पत्नी बनना चाहिए। इस संसार में सभी स्त्रियों को यह लक्ष्य होना चाहिए कि पति मिले तो ऐसा, नहीं तो पति मिला है इस संसार में हजारों बार कहते हैं कि ये साड़ी चाहिए, ये चाहिए, लेकिन नहीं ला कर देते हैं। कितनी कितनी डिमांड करते हैं परंतु पूर्ण नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वे पतिदेव स्वयं अपनी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं, दूसरों की कैसे करेंगे? लेकिन सौभाग्य है कि भक्त पति मिले हैं, ताकि ऐसा पति प्राप्त करेंगे जो हमारी सभी डिमांड पूर्ण कर पाएंगे। तो मैं यह कह रहा था, कृष्ण निर्मणम का अर्थ होता है धनी। कृष्ण परम धनी, कृष्ण से ज्यादा धनी कोई है ही नहीं संसार में, क्योंकि जो धन है वे कृष्ण से ही आता है। तो मैं यह कह रहा था 16,108 रानियां, उसका महल जो था चिंतामणि पारसमणि, और एक एक रानी के 10-10 पुत्र थे, और एक एक पुत्री, एक एक कन्या, ये सभी लड़कों के लिए अलग अलग कमरे रहने के लिए। हमारे घर पर एक पत्नी है और 3-4 बच्चे होते हैं, फिर भी एक ही रूम में सोना पड़ता है। लेकिन भगवान को ऐसा नहीं है, सब लोग आनंदित होकर रहते। तो भगवान और भगवान के धन की क्या बात की जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कुबेर जो धन के अध्यक्ष है, कुबेर देवता कुबेर जब भगवान श्री रामचंद्र के धन के सामने देखते थे, दशरथ धन देखी धनद लजाई, दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र के धन की ओर जब दृष्टि होती थी कुबेर की, तो वे लज्जित हो जाते थे। बाप रे बाप, इस संसार में धन देने वाला मैं कैशियर कुबेर, मेरे पास भी इतना धन नहीं है जितना धन रामचंद्र के पास है। भगवान बहुत धनी है, बहुत धन है उनके पास। यदि कोई उसकी शरण में चला गया तो वो माला माल हो जाता है। ये सही बात बता रहा हूं, जिसको धन चाहिए वे कृष्ण के पास जाइए, संसार के लोगों के पास मत भटकिए। सुदामा किसी भी फैक्ट्री और ऑफिस में नहीं गए थे, बताइए कौन सी मिल में काम करने गए थे, केवल भगवान का भजन करते थे। एक बार कृष्ण के पास चले गए, कृष्ण जिस द्वारका में रहते थे वैसी द्वारका नगरी ही सुदामा को दे दी। ये है धन की पराकाष्ठा। इस संसार में भी कुछ धनी है, परंतु उस धनी के पास कोई मांगने वाला जाता है तो वह धनी उस मांगने वाले को कितना धन देता है, 10 रुपया या 50 या 100 रुपया। परंतु कृष्ण ऐसे धनी है कि यदि कोई उसे मांगता है तो वे अपने पास जो है वैसा ही उसको दे देता है। इसे वदान न्याय, महावदान न्याय कहा जाता है। इतने धनी तो भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति निश्चित रूप से धनी बनेगा। और कहते हैं शरण्यम, कृष्ण जो है शरणागत रक्षक है। यदि कोई कृष्ण के शरण में चला जाता है तो कृष्ण निश्चित रूप से उनकी रक्षा करते हैं। अब देखते हो आज से 5000 वर्ष पूर्व इंद्र ने जब बहुत वर्षा बरसाई गोकुल वृंदावन में, सभी गोकुल में रहने वाले भक्तगण कृष्ण के शरण में गए और सभी शरणागत भक्तों के कृष्ण ने तुरंत रक्षा करने के लिए अपनी कानी उंगली के ऊपर गोवर्धन धारण कर लिया। शिव जी की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने भस्मासुर का वध किया। तो अब कृष्ण के शरण में जो जो लोग जाते हैं निश्चित रूप से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और अंत में कहते हैं करुणा अर्णवम, भगवान श्री कृष्ण करुणा के अर्णव, अर्णव का होता है सागर। कृष्ण करुणा के सागर है। निरंतर निर्वधि रूप से करुणा बरसाते रहते हैं। कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उसके ऊपर भगवान अपनी करुणा बरसाते हैं, परंतु कृष्ण की जो भक्ति नहीं करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर भी भगवान करुणा बरसाते हैं। बड़े बड़े असुर हो गए, उस असुरों का भगवान ने वध किया, परंतु वध करने के बाद भी वह असुरों को भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। इससे बड़ा करुणामय कौन हो सकता है। और मैत्र मुनि तो यहां तक कहते हैं अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगा सया पायत अपीय साधवी। एक पुतना नाम की राक्षसी कुलटा कृष्ण को मारने के लिए ही आई थी, अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई थी, परंतु ऐसी पुतना को भी कृष्ण ने लेबे गतिम धात्री अपने निज धाम में माता की गति दे दी। कृष्ण ने उसे अपनी माता बना लिया और अपने धाम में भेज दिया। इससे बड़ा दयामय, इससे बड़ा करुणामय कौन हो सकता है। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है या थप्पड़ मारता है तो वो व्यक्ति सामने से गाली देगा और थप्पड़ मारेगा, और यदि कोई मारने आ जाए तो उसे अपना बाप या मां बना लेगा कोई। परंतु भगवान, कोई व्यक्ति उसे मारने भी आता है तो उसे अपनी माँ और पिताजी का स्थान दे देते हैं। कृष्ण करुणार्णवम, इसलिए कहा जाता है हे कृष्ण करुणा सिंधु। तो इस प्रकार से नारद मुनि ध्रुव महाराज को भगवान के गुण का वर्णन कर रहे हैं। फिर से नारद मुनि भगवान के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं श्री वत्स अंकम। नारद मुनि कहते हैं तुम्हें भगवान विष्णु का ध्यान करना है और वह भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का चिन्ह है, श्री वत्स चिन्ह है। भगवान श्री विष्णु के दाएं वक्षस्थल पर गोल्डन रंग की रोमावली है और उस गोल्डन रंग की रोमावली में लक्ष्मी जी विराजमान, लक्ष्मी जी रहती हैं। इसलिए कहते हैं श्री वत्स अंकम। और कहते हैं घनश्यामम, और उन भगवान का रंग कैसा है, भगवान विष्णु का रंग कैसा है जिसे तुम्हें ध्यान करना है, तो कहते हैं घनश्यामम। घन का अर्थ होता है बादल भरा हुआ बादल, जब बादल में पानी भर जाता है तो वे बहुत काले रंग का हो जाता है, घना बादल। तो वह घने बादल के समान वह भगवान श्याम वर्ण के हैं। तो भगवान का रंग घनश्याम है। कभी कभी भगवान कोई कोई अवतार में गौर रंग के रूप में प्रकट होते हैं, परंतु भगवान का स्वरूप गत भगवान का रंग घनश्याम है। संसार में कुछ लोग पूछते भी हैं कि भगवान क्यों काले हैं, भगवान का अपना स्वभाव है। अरे भौतिक संसार वाले भी गाते हैं, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो वास्तव में भगवान का रंग घनश्याम वर्ण है, काले नहीं है, मेघ के रंग के समान भगवान का रंग है। और आगे कहते हैं, पुरुषम, भगवान परम पुरुष है। पुरुष के तीन अर्थ है, परम पुरुष, आदि पुरुष और महापुरुष। हे ध्रुव, तुम्हें जिस भगवान का ध्यान करना है वे परम पुरुष है, वे परम पुरुष हैं। वे भगवान भोक्ता, पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, जो सभी लोगों को भोगे। तो भगवान विष्णु भोक्ता है और आदि पुरुष है। आदि का अर्थ होता है सबके कारण। जैसे किसी व्यक्ति को पूछा जाए कि अमित प्रभु आपके आदि कौन है, तो कहेंगे उसके पिताजी। उसके आदि कौन है, उसके पिताजी। उसके आदि कौन है, उसके पिताजी। वैसे सबके आदि यदि कोई है तो वह है भगवान विष्णु। और महापुरुष यदि अर्थ लिया जाए तो महापुरुष का अर्थ होता है, महापुरुष में कई सारे चिन्ह होते हैं। महापुरुष के जो हाथ होते हैं वे बहुत लंबे होते हैं, आजानु लंबित। महापुरुष के जो चरण के तलवे होते हैं वे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो भगवान विष्णु के अंग महापुरुष के समान है। और वन मालिनम, भगवान विष्णु वन माला धारण करते हैं। वे जो माला धारण करते हैं उनमें वन के फूल लगे हुए होते हैं। वैसे भगवान के पास सोना और गहने की कोई कमी नहीं है, वे चाहे तो पूरे सोने और गहने से भर सकते हैं, परंतु भगवान को ये फूलों की माला बहुत अच्छी लगती है। और रंग बिरंगी फूल भगवान धारण करते हैं। भगवान पांच रंग के फूल की माला पहनते हैं और उस पांच रंग के फूल की माला को वैजयंती माला कहते हैं। आपने सुना होगा वैजयंती माला, मोर मुगुट माथे तिलक विराजे गले वैजयंती माला। भक्त लोग बहुत सुंदर गाते हैं। कोई कहे वसुदेव का नंदन, कोई कहे नंदलाला, आहा कोई कहे नंदलाला, राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। वैजयंती माला भगवान धारण करते हैं, फूल की माला। और यशोदा मैया यदि हीरे की सोने की माला पहनाते हैं तो वन में जाने के बाद सभी उनके गोप ग्वाल सखा यह गहने की माला निकाल देते हैं और यह बहुत सुंदर फूल की माला पहनाते हैं। इसलिए प्रथा है भगवान को फूल की माला पहनानी चाहिए। वन मालिनम। आगे भगवान के रूप का वर्णन करते हुए नारद मुनि कहते हैं, किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलयान्वितम कौस्तुभा भरण ग्रीवम पीत कौशेय वाससम। कहते हैं किरीटिनम, किरीट का अर्थ होता है मुकुट। नारद मुनि ध्रुव महाराज को कहते हैं उस रूप का ध्यान करना, भगवान विष्णु बहुत ही सुंदर मुकुट पहने हैं और वह मुकुट बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड, मिलावट वाला सोना नहीं। यहाँ पर हम जो सोना पहनते उसमें कितनी मिलावट है, परंतु भगवान बिल्कुल शुद्ध सोना पहनते हैं। तो किरीटिनम कुंडलिनम, कुंडल का अर्थ होता है कान में जो इयररिंग, कान में जो पहनते हैं उसे कुंडल कहते हैं। भगवान बहुत ही सुंदर कुंडल धारण करते हैं जिसमें बहुत ही सुंदर हीरे जवेरात जड़े रहते हैं। केयूर, भगवान बहुत ही सुंदर केयूर का अर्थ होता है बाजूबंद, यहां पर हाथ में। आज तो पुरुष लोग नहीं पहनते, स्त्रियां कुछ कुछ पहनती हैं, जो सुखी घर की स्त्रियां हैं, जिसके घर पर धन और सोने की कमी नहीं है, वे बाजूबंद पहनती हैं। भगवान सोने के बाजूबंद पहनते हैं। और वलय, वलय वलयान वर वलयान्वितम, वलय का अर्थ होता है कंकणी। कंकणी का अर्थ क्या होता है? हाँ, कंकण, कंकण, कंगन, कंगन। भगवान के हाथ में बहुत ही सुंदर कंगन भी है। कौस्तुभाभरणम, भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। भगवान के गले में एक कौस्तुभ मणि है जो बहुत सुंदर है। और एक कौस्तुभ मणि को धारण करने के लिए भगवान को बहुत मेहनत करना पड़ा था। कौस्तुभ मणि है और पीत, पीत कौशेय वासस। भगवान कौन से रंग का कपड़ा पहनते हैं? कहते हैं पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। और वह वस्त्र की क्वालिटी क्या है? पॉलिस्टर है, कॉटन है, क्या है? तो कहते कौशेय, कौशेय। कोश का अर्थ होता है रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े से एक वस्त्र बनता है, रेशम के कीड़े से वस्त्र बनता है, उसे कौशेय कहा जाता है। और हमारी भाषा में उसे सिल्क कहते हैं, है ना प्रभु जी? हाँ, कोशा सिल्क, कोशा सिल्क। तो भगवान ये कोशा सिल्क धारण करते हैं, कौशेय, रेशम के कीड़े से बने हुआ वस्त्र। तो बहुत ही सुंदर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। कांची कलाप परियस्तम, भगवान के कमर के ऊपर बहुत ही सुंदर करधनी है। और यह करधनी अपनी धोती के ऊपर बहुत, हाँ मैं भूल गया, भगवान रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। और वह रेशमी वस्त्र कैसे होते हैं? धोती होती है। ध्रुव को कहा ऐसा ध्यान मत करना कि भगवान पैंट और शर्ट पहने हैं। आजकल लोग ऐसे भगवान को का ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान का फोटो रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं जो पैंट और शर्ट पहने हुए हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, परंतु यहां पर भगवान की डेफिनेशन दे रहे हैं कि भगवान धोती धारण करते हैं। ये पैंट शर्ट तो आजकल ये फॉरेन विदेश के लोग ने यहाँ पर लाए हैं। हमारे भारत वर्ष का पहले यही वस्त्र था, धोती और कुर्ता। हमारे गांधी बापू ये देकर गए हैं संपत्ति, धोती कुर्ता की, लेकिन हम सब लोग भूल गए। तो ये भगवान का वस्त्र है और उस धोती के ऊपर भगवान बहुत ही सुंदर करधनी बांधते हैं और बहुत टाइट, ताकि वह धोती निकल न जाए। हम देखते हैं कई भक्त नए नए होते हैं, 10-15 बार वो धोती अंदर डालते रहते हैं, गांठ मारते रहते हैं, किसी किसी की धोती निकल भी जाती है। प्राय हम देखें ड्रामा में, जब ड्रामा करते हैं तो बहुत झगड़ा करना होता है। तो एक बार वक्रेश्वर प्रभु की निकल गई थी, ब्रजमंडल में ड्रामा कर रहे थे और उन्होंने एक रोल लिया था। खैर, परंतु भक्तों को चाहिए कि धोती को कस के गांठ मार दे एक बार, ताकि पूरा दिन वह ठीक ना करना पड़े। भगवान बहुत ही सुंदर करधनी पहनते हैं और कलाप, उस करधनी के ऊपर छोटी छोटी, क्या कहते हैं उसे, बजती है घुघरी, हो तो गुजराती में कहते हैं घुंघरू, छोटी छोटी। और लसत कांचन नूपुरम, भगवान बहुत ही सुंदर नूपुर धारण करते हैं। दर्शनीय तमम, बहुत सुंदर भगवान का रूप है, शांतम, भगवान बहुत शांत है, मनोनयन वर्धनम, और भगवान को देखकर केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। पदभ्याम नख मणि श्रेणियाम, भगवान के चरण में जो नख है वे नख से बहुत सुंदर प्रकाश निकलता है, जैसे चंद्रमा से प्रकाश और शीतलता निकलती है वैसे भगवान के नख से प्रकाश निकलता है। और विलस सद्भ्याम समर्चताम रित पद्म करणि दिश्यम आक्रम्या आत्मनय अवस्थितम, यदि कोई इस भगवान का दर्शन करता है तो उनकी आत्मा में बहुत परम सुख प्राप्त होने लगता है। स्मयमानम अभिध्याये, स्मयमानम भगवान का रूप आप देखेंगे कभी भी मुस्कुराते हुए देखने मिलेंगे। स्मय का अर्थ होता है स्मित, भगवान के मुख के ऊपर स्मित देखा जाता है। स्मित का अर्थ होता है इस प्रकार से हंसना ताकि दांत न दिखे, इसे स्मित कहते हैं। और हंसते हुए यदि दांत दिखता है तो उसे हास्य कहते हैं, और यदि कोई ठठाकर हंसता है तो उसे प्रहास्य कहते हैं। अगले रविवार को हंसेंगे रावण जो बैठे हैं हमारे बीच में। आने वाले रविवार को बहुत ही सुंदर ड्रामा है यहाँ पर, रामायण। तो रावण का हंसना ऐसे प्रहास्य कहते हैं, लेकिन भगवान स्मित बहुत ही मंद मंद मुस्कुराते हैं। और ऐसे भगवान का है ध्रुव ध्यान करना चाहिए, और जिस भगवान का तुम ध्यान कर रहे हो वरद ऋषभम, वे भगवान वर देने में श्रेष्ठ है। यदि कोई उस भगवान की पूजा करता है, भगवान को प्रसन्न करता है, तो भगवान उसको वर प्रदान करते हैं। एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तुरणम संपन्नम न निवर्तते। यदि कोई इस भगवान का ध्यान करता है, तो उनका मन उस भगवान में लग जाता है, और जब मन भगवान में लग जाता है तो भगवान में लगा हुआ मन वापस लौट कर नहीं आता है, उसमें मन लग जाता है। इस संसार में किसी भक्त का मन लगने की बात छोड़ दीजिए, कभी कभार एक दिन में एक मिनट भी मन लग जाता है तो इस संसार से विरक्त तो होने लगता है। परंतु जिसका मन भगवान के ऊपर निरंतर लगने लगेगा तब तो फिर उसको दुनिया की यह सब ऐश्वर्य भोग एक कीड़े के समान लगने लगेंगे। तो मन लग जाता है। और हे ध्रुव, ये अब तक मैंने आपको तीन प्रकार से भगवान की भक्ति होती है, वाणी से, मन से और इंद्रियों से। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने मन से किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, मन से किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए, इसका वर्णन किया। अब नारद मुनि ध्रुव महाराज को वाणी से किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए यह बता रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, जपश्चो परमो गुह्यम श्रूयताम में नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। नारद मुनि ने कहा कि इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए, परंतु ध्यान करने के लिए जप करना बहुत आवश्यक है। जप, देखिए पहला शब्द है जप। जप का अर्थ होता है, जप का साधारण अर्थ होता है किसी भी एक बात को बार बार दोहराना, बार बार बोलते रहना, इसे जप कहते हैं। और जप जो है भगवान के नाम का जप, ये बहुत दिव्य होता है। जब तक भगवान के नाम का जप नहीं किया जाता है तब तक भगवान की भक्ति पूर्ण नहीं होती है। भगवान के नाम में के जप में बहुत शक्ति होती है, और यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि हे नृपात्मज, हे राजा के पुत्र, संबोधन दे रहे हैं। शुरू कथा में नारद मुनि संबोधन दे रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि ध्रुव महाराज के चित को खींच रहे हैं। इसलिए कहते हैं श्रूयताम, तुम सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को सुनो ध्यान लगाकर, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए यहां पर सुन लिया और मधुवन में जाकर पता लगा कि मंत्र भूल गया हूं, फिर फोन घुमाना पड़ेगा, गुरुजी क्या मंत्र दिया था भूल गया मैं। इसलिए कहते हैं श्रूयताम, ध्यान से सुनो हे नृपात्मज, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देने जा रहा हूं, यदि कोई यह मंत्र सात रात के लिए जपे, सात रात का अर्थ है सात दिन सात रात के लिए जपे, तो वह व्यक्ति सप्त रातम प्रपटन पुमान पश्यति खेचरान, सात दिन सात रात तक मैं जो मंत्र देने जा रहा हूं वह मंत्र का कोई उच्चारण करे, तो वह व्यक्ति इस आंखों से भगवान के पार्षदों को घूमते हुए देख सकता है। आज भी यह मंत्र का कोई सात दिन सात रात तक जप करे तो वह इस भगवान के दिव्य दिव्य पार्षदों को, देवताओं को इस आंख से देख सकता है। ध्रुव महाराज ने कहा बताओ प्रभु वह मंत्र कौन सा है, जल्दी बताओ। तब नारद मुनि कहते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवा, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारद मुनि ने यह मंत्र दिया और कहा कि ओम, ओम का अर्थ होता है संबोधन, नमो का अर्थ होता है प्रणाम करता हूं, किसको प्रणाम करता हूं, भगवान को प्रणाम करता हूं जो वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, ऐसे वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान को मैं नमः प्रणाम करता हूं। यह मंत्र का यदि कोई सात दिन सात रात तक जप करे तो वे भगवान के पार्षदों को देख सकता है। परंतु हमें भगवान के पार्षदों को देखना नहीं है, केवल हमें तो भगवान का पार्षद बनना है। इसे कलयुग में यदि भगवान के धाम में भगवान का पार्षद बनना है तो कलयुग के लिए हरे कृष्णा इस मंत्र में क्या अंतर है। नारद मुनि ने जो मंत्र दिया वह मंत्र में ओम लगा हुआ है और ओम लगा हुआ जितना भी मंत्र है उसे केवल मंत्र कहा जाता है और ये मंत्रों का उच्चारण योग्य जगह पर ठीक स्थान पर योग्य पात्र इसका उच्चारण कर सकते हैं। यदि गलत तरीके से इस मंत्र का उच्चारण किया गया तो यह मंत्र रिएक्शन दे सकता है, इसलिए इसमें बहुत रिस्क है। परंतु कलयुग में कलयुग पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के बद्ध जीवों के लिए मंत्र नहीं महामंत्र दिया है जिसमें ओम संबोधन नहीं है, जिसमें आदि बीज अंत नहीं है। यदि कोई महामंत्र का जप करता है तो निश्चित रूप से वे भगवान के पार्षदों को देख तो सकता है परंतु वे स्वयं पार्षद बनकर भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा हरे, तो इस प्रकार से नारद मुनि भगवान के रूप का वर्णन किए। भगवान के रूप का वर्णन करने के बाद रूप भगवान के रूप का वर्णन करते करते भगवान का नाम भी लेना चाहिए, ये मुख्य चीज है। हम जब भगवान के नाम का जप करते हैं महामंत्र जपते हैं तो मुख्य चीज है महामंत्र जपते हुए भगवान के रूप का दर्शन करें, भगवान की लीला का दर्शन करें। परंतु यह करना बहुत मुश्किल है। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि चैंटिंग करते समय, भगवान का नाम जप करते समय हमें मन में कैसे विचार आने चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मन में भगवान का रूप और भगवान की लीला स्मरण होनी चाहिए। परंतु प्रभुपाद जी ने कहा तुम ये नहीं कर सकते हो, इसलिए सबसे पहले भगवान का नाम लेते समय भगवान के नाम स्वरूप, भगवान के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। जब भगवान का नाम ठीक से हम स्मरण करेंगे और सुनेंगे, तब जाकर धीरे 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 ऑटोमेटिक भगवान के रूप का ध्यान होने लगेगा। किसी को प्रयास करके भगवान के रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये सहजिया वृत्ति हो जाएगी। परंतु यदि हम भगवान के नाम लेते समय भगवान का नाम का ही ध्यान करें, तो धीरे 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 समय बीतने पर, हमारी स्थिति होने पर भगवान के रूप का ध्यान होने लगेगा। और जब भगवान के रूप का ध्यान होने लगेगा, तब भगवान के गुण का ध्यान होने लगेगा, भगवान की लीला का ध्यान होने लगेगा। तो भगवान की लीला का ध्यान करना यह सबसे मुख्य चीज है, परंतु इसके लिए महामंत्र लेना चाहिए, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान की भक्ति में आगे बढ़िए, यही जीवन की सार्थकता है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है कि सतयुग में, ठीक है बाद में ले लीजिए, बाद में लीजिए, सतयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान का ध्यान करना चाहिए, और त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना है, द्वापरे परिचर्यायाम और कलो तदरी कीर्तनात्। कलयुग में भगवान की प्राप्ति भगवान का ध्यान करने से होती है, तो नारद मुनि, ये सतयुग की घटना है, नारद मुनि ये ध्रुव महाराज सतयुग में हो गए, तो सतयुग में ध्यान करना तो बताएं, भगवान के इस रूप का ध्यान करो, तो ये मंत्र जपने के लिए क्यों कह रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। यद्यपि चारों युगों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग साधन है, सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में पूजा और कलयुग में कीर्तन, परंतु चारों युगों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग साधन है, परंतु भगवान का नाम जो है यह चारों युग में भगवान की प्राप्ति करा सकता है। भगवान का नाम यदि सतयुग में लिया जाए तो सतयुग में भी भगवान के नाम से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के नाम में इतनी ताकत है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, चहु युग चहु श्रुत नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आनु पाव। चहु युग चहु श्रुत, चारों श्रुति में और चारों युगों में यह नाम की महिमा गाई गई है। नाम केवल कलयुग के लोगों का ही उद्धार नहीं करता है, सभी युगों के लोगों का उद्धार यह महामंत्र कर सकता है, ठीक है ऐसा है। और कोई प्रश्न है पूछिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चाहे मुक्ति मांगो या भक्ति मांगो, अब ये अवस्था के ऊपर डिपेंड है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है उसमें व्यक्ति मुक्ति मांगता है, बहुत दुखी हूं ये दुखों से मुक्त करा दीजिए। परंतु जैसे जैसे वो भक्ति करने लगता है, भक्ति करने लगता है, तो उस भक्ति में उसे इतना आनंद आने लगता है, इतना आनंद लगता है, फिर भगवान से कहता है ये मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को कहते हैं, सायुज्य सामीप्य सालोक्य साष्टी इत्यादि ये पांच प्रकार की मुक्ति भगवान यदि किसी भक्त को दे भी दे, शुद्ध भक्त की बात है, शुद्ध भक्त के सामने ये पांच मुक्ति भगवान रख दे, परंतु दिय मानम न गृहणंती मद भक्त जना। हे मां, मेरे शुद्ध भक्तों को यदि यह मुक्ति भी दी जाए तो इस मुक्ति को वे ठुकरा देते हैं। तो शुद्ध भक्त मुक्ति नहीं मांगते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, न जन्म न धनम न सुंदरी कविता मा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनी, मुझे हजारों हजारों जन्म दीजिए कोई बात नहीं, परंतु सभी जन्मों में मेरी आपकी भक्ति दीजिए, भक्ति में आनंद। तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में मुक्ति मांगते हैं और शुद्ध भक्त की अवस्था में भक्ति मांगते हैं। जो भी है, जो भी अवस्था है, भगवान से ही मांगना चाहिए। ये बहुत सुंदर है। भक्त का यह भाव है कि मुझे भक्ति दीजिए, परंतु भगवान तो उसे मुक्ति देने वाले ही हैं, चाहे मांगो या न मांगो। भगवान से आप मांगो या न मांगो, भगवान देंगे ही, लेकिन मांगने से हृदय पवित्र होता है। अब यदि कोई व्यक्ति मुक्ति मांगता है और यदि कोई व्यक्ति भक्ति मांगता है, तो मुक्ति मांगने वाले को तो भगवान मुक्ति देंगे ही, परंतु भक्ति मांगने वाले को भी भगवान मुक्ति देंगे। परंतु ये भक्त का भाव मैं बता रहा हूं कि भक्त ये मांगता है, भगवान को तो जो देना है वही देंगे, परंतु भगवान ये मांगता है। मुक्ति तो भगवान सबको देंगे। और मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का यह नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाना, यह नहीं। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति, जीव का जो स्वरूप है, जीवर स्वरूप कोई नित्य कृष्ण दास, उस दास के रूप में भगवान की नित्य सेवा में नित्य धाम में स्थित हो जाना, इसे मुक्ति कहते हैं। विष्णु और कृष्ण, बहुत सुंदर प्रश्न है, बैठिए। विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान विष्णु जो है वे कृष्ण के अवतार है, अंश है, बस। बाकी दोनों एक ही तत्व है, दोनों भगवान है, लेकिन कृष्ण और विष्णु दोनों स्वरूप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, एक व्यक्ति है, जब अपने घर पर रहता है तो उसका रूप अलग होता है, और जब अपनी ऑफिस में बैठता है बॉस की सीट के ऊपर, तब उसका रूप, रहने का बोलने का ढंग अलग होता है। ऑफिस में जब होता है तो कितने वर्करों को डांटता है, ये करता है, वो करता है, और घर पर आता है तो उसका लड़का उसे थप्पड़ मारता है। एक ही व्यक्ति है, दोनों जगह पर अलग अलग रूप है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जो है ये भगवान के, जब हम जब अपने हमारे घर में रहते हैं तो ये कृष्ण का रूप है, और ऑफिस में जब रहते हैं तो ये विष्णु स्वरूप है, बस यही है। मैनेजमेंट के लिए भगवान विष्णु स्वरूप में होते हैं, और लीला करने के लिए कृष्ण स्वरूप में होते हैं, दोनों में और कोई अंतर नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्व से भगवान को जानना चाहिए। तत्व का अर्थ होता है सही सही रूप में, ठीक ठीक रूप में। भगवान श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानने का अर्थ क्या है? पहले मैं यह बताता हूं, भगवान श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानने का अर्थ है ये तो चोर है, ये तो ग्वाला है, ये तो हमारी तरह एक लड़का है। पहली बात, भगवान स्त्रियों के आभूषण धारण नहीं करते, स्त्रियां भगवान के आभूषण धारण करती हैं। ये पहली बात, ये स्टैंडर्ड फिक्स करने वाले हम नहीं है कि चूड़ियां स्त्रियों को ही पहननी चाहिए, पुरुषों को नहीं। ये स्टैंडर्ड भगवान फिक्स करते हैं। आज तो सब बदल गया है, आज लड़की होती है वो पैंट शर्ट पहनती है, लड़की जो होती है वो छोटे बाल रखती है, और लड़के लोग बड़े बड़े बाल रखते हैं, हाँ इयरिंग भी पहनते। लड़कियां जो होती है सब पहनना बंद कर दी, और लड़के लोग पहनना शुरू किए। आज कान में पहनते हैं, यहाँ नाक में पहनते हैं, यहाँ पहनते, कोई जीवा में भी पहन लेता है। कैसे खाते होंगे वो, कहाँ कहाँ पहनते। लड़की लड़के लड़का बनना चाहती है, और लड़के लड़की बनना चाहते हैं। भगवान दोनों के ऊपर कृपा कर देंगे, दोनों को दुर्गति में डाल देंगे फिर अगले जन्म में, और फिर रास्ते में भटकते रहेंगे, क्या करें। ये तो स्टैंडर्ड भगवान फिक्स करते हैं, भगवान के आभूषण स्त्रियां धारण करती है। ये और भगवान भगवान स्वतंत्र है, जब चाहे कुछ भी पहनना चाहे पहन लेते हैं। कभी साड़ी की पहनने की इच्छा होती है, भगवान साड़ी पहन लेते हैं। इच्छा हुई थी एक बार, मोहिनी रूप लिया, सबको बेहोश। शिव जी जो कामदेव को भस्म कर दिए, वे भी लट्टू हो गए हैं। सबसे पहले आत्मा जब निकलती है तो पहले यह देखा जाता है कि इसने भजन किया या नहीं किया है। जिसने पाप किया है उसकी तो बहुत दुर्गति होती है। तो ये दो चीज है, भजन करने वाले की आत्मा तो डायरेक्ट भगवान के पार्षद आते हैं, उसे लेकर भगवान के धाम में चले जाते हैं। और जिसने भजन नहीं किया है, जिसने पाप ही किया है जीवन में, तो उसकी आत्मा जब तक 12 दिन तक यहाँ पर रहती है, और फिर यहाँ पर भटकती हैं, उनका मन इत्यादि यहाँ पर रहता है, बाकी उसकी आत्मा को तो ये लेकर चले जाते हैं यमदूत, यमदूत लेकर चले जाते हैं पितृलोक में, और पितृलोक में 12 दिन के लिए रहते हैं, और वहां पर जैसे किसी मुजरिम को कटेरे में खड़े रखते हैं, वहां यमराज के दरबार में उसे खड़ा रखा जाता है, उसकी सुनवाई होती है, उसके कर्म का लिस्ट देखा जाता है, उसको सजा देते हैं ये। और जब व्यक्ति पिंड दान करता है, उसका पुत्र पिंड दान, तब पितृलोक से वह नरक की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। आपकी क्या इच्छा है? तो क्या इच्छा है, रहना है हमारे साथ, नहीं रहना है? देखिए, भक्ति स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है भक्ति करने के लिए शिखा या धोती कुर्ता यह सब होना चाहिए, ये सब हुए बिना भी भजन कर सकते हैं, परंतु यदि प्रचार करना चाहते हैं तो यह सब धारण करना होगा। देश में रहने के लिए तो आप रह सकते हैं, परंतु यदि युद्ध करना है तो शस्त्र हाथ में लेना होगा। तो भजन करने के लिए नो प्रॉब्लम, आप 4 नियम का पालन, 16 माला जप करके भजन करो, अपना भजन कर सकते हो ये बिना कुछ रखे, परंतु प्रचार बन करना है, हजारों को भक्त बनाना है, प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाना है, भगवान का प्रिय बनना है, तो यह सब रखना होगा, क्योंकि हमें आदर्श बनना होगा। एक हम भी बहुत शौकीन थे बाल के, आप हमारे फोटो देखेंगे, एक बाल, हम बाल में बहुत खर्चा करते थे, लेकिन प्रचार में बहुत बाधा है। ये व्यक्ति की आसक्ति कलयुग में, भागवत की 11वें स्कंद में वर्णन है, कलयुग में लोगों की आसक्ति धन में नहीं होगी, गहने में नहीं होगी, बाल में होगी। ये मैं अनुभव किया हूं, एक बाल किसी का गिर जाता है तो बहुत टेंशन होता है, बाप रे बाप। ये मुझे आया है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो कंघी मारते मारते एक बाल आ जाता था तो मेरा हृदय बहुत दुखी हो जाता था, अरे बाप रे ये बाल। तभी तो कड़क है, पहले बहुत सिल्की बाल थे, तो बाल में बहुत आसक्ति होती है। और भागवत में वर्णन है कलयुग में लोग जितना खर्चा बाल में करेंगे और ये मुंह ठीक करने में करेंगे, उतना और कहीं नहीं करेंगे। ब्यूटी पार्लर में देखेंगे एक से एक, रास्ते में कई ब्यूटी पार्लर देखेंगे आपको, और बालों में भी ये कलर कराना वह कराना, किसने किया है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर सब लोग यहाँ थोड़ा, यहाँ अलग कलर, यहाँ अलग कलर, क्या क्या सिस्टम निकली आज तक, यहाँ यहाँ का सारा बाल काट देना, कुछ लोग यहाँ का ही रखते बीच का काट देते हैं। अरे एक जगह तो मैंने देखा ये कलम जो है यहाँ तक, शिवाजी बन गए। एक से एक बार, कुछ लोग तो लिखाते हैं इंडिया यहाँ पूरा बाल में, अपनी प्रिया का नाम लिखाते हैं, कुछ लोग चोटी रखते हैं बाल में, चोटी निकले, आजकल स्टाइल है, एक चोटी, दो चोटी, तीन, पूरा गोल गोल चोटी, अच्छा शिखा रखे हैं। हमें तो यही समझना चाहिए, भक्त लोग एक रखते हैं, 10-10 रखते हैं। तो ये तो इस प्रकार से प्रचार करना है तो कीजिए, और नहीं करना है तो कोई फोर्स नहीं है। देखिए ये सब चीज में फोर्स नहीं किया जाता है, ये जैसे ही आप भजन करोगे धीरे 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 करके सब आ जाएगा, लेकिन साथ में रहिए, डरिए मत, साथ में रहेंगे तो हम हमारी तरफ बना देंगे आपको। ठीक है, और कोई प्रश्न पूछिए। शिखा रखने के बहुत बहुत कारण है, इसके ऊपर एक प्रवचन हम करेंगे, लेकिन एक भक्त बहुत सुंदर कहते हैं, उस बात मुझे याद आ रही है, ये शिखा जो है एंटीना है, जैसे हम एंटीना रखते हैं डायरेक्ट दूरदर्शन को नजदीक देखने के लिए, तो भगवान बहुत दूर है, और भगवान के साथ बातचीत करने के लिए ये एंटीना रखना बहुत जरूरी है। सिग्नल तुरंत, जितना बड़ा एंटीना उतना तुरंत सिग्नल। कुछ कुछ लोग बहुत इसमें कंजूसी करते हैं, इतना इतना रखते हैं, हमारे ठक्कर प्रभु दिखाइए कितना बड़ा है, बड़ा है। कुछ लोग बहुत छोटा, दिखता भी नहीं है, उसका उसका नेटवर्क ठीक नहीं होता है। बड़ा होना चाहिए शिखा। तो ये है, और ये भी एक भाव है कि शिखा से गुरु के नियंत्रण में व्यक्ति रहता है, यदि किसी का पतन हो गया, भक्ति में होता जा रहा है, तो यदि शिखा है तो गुरु की कृपा से वो बच सकता है। गुरु शिखा पकड़कर उसे बाहर निकाल सकता है माया से, जैसे चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास को निकाले थे। तो है, तो इतना ही समझिए। और कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछने चाहिए इस प्रकार, क्योंकि हम एक कथा कह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इस कथा में ये सब सिद्धांत आए, तो जो आप जिस बात को जानना चाहो उसे पूछना चाहिए। माताओं में से एक भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि माताएं सब कुछ जानती है। आप मुझे मत पूछिए, घर पे जाकर पूछ लीजिए, तभी तो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, आप सबका धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर आए। अनाउंसमेंट पर आकर वो करेंगे, आप कर दीजिए, मैं ही कर दूं। ठीक है, तो